आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मजीद 25 लाख एलपीजी कनेक्शन फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने के आज़्म को तकवियत मिलेगी। भारत और मराकश ने दिफाई सनअती इश्तराक को बढ़ाने की खातिर रबात में दिफाई ताउन से मुतालिक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। आज 10वां नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाएगा, जो रिवायती भारतीय तरीके इलाज के आलमी सतह पर फरोग के सिलसिले में एक तारीखी संग मील है। फ्रांस ने अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। और ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को आइंदा फीडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री अता की गई है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख इजाफी एलपीजी कनेक्शन फराहम करने का फैसला किया है। नवरात्रि के पहले दिन ख्वातीन मुस्तफेदीन को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत के इस कदम से न सिर्फ इस मुकद्दस त्यौहार पर उनके लिए नई खुशी और मसरत लाएगा, बल्कि ख्वातीन को बाएख्तियार बनाने के आज़्म को भी तकवियत मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि हुकूमत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन में से हर कनेक्शन पर 2000 रुपए से ज्यादा रकम खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि इस तौसी के साथ उज्ज्वला फैमिली मेंबरों की तादाद में 10 करोड़ 98 लाख का इजाफा हो जाएगा। जनाब पुरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी खवातीन को खाना पकाने का साफ ईंधन दस्तियाब हो सकेगा।
हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी की शरहों में कटौती के नतीजे में घरों के लिए ज्यादा बचत हो सकेगी और कारोबार करने में आसानी पैदा होगी और इसमें मजीद सुधार आएगा। कल नवरात्रि के पहले दिन एक मुरासले में हमवतनों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जीएसटी की शरहों में कटौती का मतलब है हर घर के लिए ज्यादा बचत और कारोबार करने में ज्यादा आसानी पैदा करना। अगले सिलसिले की जीएसटी इसलाहत के साथ आवाम अब जीएसटी इसलाह का फायदा हासिल कर सकेंगे। टैक्स के नए निजाम के तहत जो कल से नाफिज हो गया है, नए टैक्स ढांचे के तहत जीएसटी काउंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निजाम को सहल बना दिया और अब 5% और 18% के सिर्फ दो जुमरे होंगे, जबकि पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार जुमरे थे। इन असलाहत के जरिए कई अशिया और खिदमात पर टैक्स कम करके शहरियों को बराह रास्त राहत फराहम की जा सकेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
अगले सिलसिले की जीएसटी असलाहत के तहत हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में अहम कटौती का आगाज किया है। कपड़े की सनत को राहत फराहम करने की गरज से हुकूमत ने इंसान के बनाए हुए फाइबर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी है, जबकि इंसान के बनाए हुए धागों पर टैक्स शरहों में भी कमी की है और इसे 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस फैसले से मुल्क में टेक्सटाइल के शोबे को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। खिलौनों की घरेलू सनत को ताबुन देने के लिए हुकूमत ने खिलौनों और खेल के सामान पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस फैसले से सस्ते खिलौने ज्यादा तादाद में बन सकेंगे और घरेलू और खिलौने बनाने वाली एमएसएमई को भी मदद मिलेगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए खिलौने बनाने वाली कंपनी के सीईओ मोइज गवाजवाला ने अगले सिलसिले की जीएसटी इसलाहत की सताइश की है। इन इसलाहत से मुआशरे के सभी तबकों के लिए खिलौने सस्ते हो जाएंगे।
I would thank our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi for bringing toys from a 12% GST bracket into a 5% GST. Toys are extremely important in developing a child's skill and knowledge and help them become successful in their future life when they grow up. Not only that, toys add an extremely important aspect of joy to our growing up. This way, he is truly making sure that every child grows up happy, excited and ready to be successful.
जीएसटी में कटौती से आम आदमी खुसूसन मुतवस्सत तबके के लोगों पर माली बोझ कम हो जाएगा। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मराकश के वजीर दिफा अब्दुल लतीफ लोधी ने कल रबात में दिफाई ताउन से मुतालिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुफाहमतनामा बढ़ती हुई शराकत दारी के लिए एक मजबूत इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करेगा और दिफाई सनत मुश्तरका फौजी मशकें फौजी तरबियत और सलाहियत साजी में इश्तराक की राह हमवार करेगा। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई सनती इश्तराक बढ़ाने का भी फैसला किया है और एक जामे रोडमैप पर भी इत्तेफाक किया है जिनमें इंसदादे दहशतगर्दी और बहरी सलामती साइबर दिफा अमन कायम करने के लिए कार्रवाइयां फौज के लिए दवाएं और माहरीन के तबादले शामिल हैं। दोनों मुल्कों के वज़रा के दरमियान तबादले ख्याल से भारत और मराकश के दरमियान देरपा दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी हुई है। इन इक़दामात को जहद देने की गरज से जनाब राजनाथ सिंह ने रबात में भारत के सफारतखाने में एक नया दिफाई विंग खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने दिफाई ताउन बढ़ाने पर मजीद तबादले ख्याल के लिए जनाब अब्दुल लतीफ को भारत का दौरा करने के लिए बाकायदा दावतनामा भी पेश किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मुनक़दा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर अपने अमरीकी हमनसब मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों वज़रा के दरमियान इस साल होने वाली ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले दोनों वज़रा ने वाशिंगटन में क्वाड के वज़रा खारजा की मीटिंग के दौरान बातचीत की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग में दो तरफा और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों वज़रा के दरमियान तरजीही शोबों में पेशरफ्त की खातिर पायदार माहदों की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत और अमरीका के दरमियान एक तजारती माहदे के पहले मरहले के बारे में बातचीत की खातिर अमरीका के तिजारत से मुतालिक नुमाइंदे जेमिसन ग्रीड से मुलाकात की। इससे पहले अमरीकी अहदेदार ब्रेंडन लिंच और भारत के तिजारत से मुतालिक चीफ मुजाकरातकार राजेश अग्रवाल के दरमियान कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तेफाक राय हुआ था। ये तजारती मुजाकरात सदर ट्रंप की तरफ से 16 सितंबर को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 75वें योम पैदाइश की मुबारकबाद देने के बाद शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था और यूक्रेन में अमन की खातिर उनकी तरफ से किए जाने वाले इकदाम की हिमायत की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान साल 2023 के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। इस मौके पर सरकर्दा फिल्म अदाकार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड अता किया जाएगा जो सिनेमा के शोबे में सबसे आला एजाज है।
साल 2023 के लिए मुख्तलिफ जुमरों में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स अता किए जाएंगे। ये अवार्ड्स फिल्म साजी अदाकारी और फिल्मी कहानीकार के लिए दिए जाएंगे। बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड हिंदी फिल्म 12th फील को दिया जाएगा जबकि बेहतरीन हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को दिया जाएगा। बेहतरीन अदाकारी के जुमरे में नेशनल फिल्म अवार्ड्स अदाकार शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए अता किया जाएगा। इसके अलावा अदाकार विक्रांत मैसी को भी 12th फील के लिए दिया जाएगा। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड अता किया जाएगा। बेहतरीन हिदायतकारी का एजाज सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी को दिया जाएगा। हिंदी फिल्म रॉकी और प्रेम कहानी को बेहतरीन मकबूल फिल्म के लिए अवार्ड दिया जाएगा। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में वाकई महात्मा मंदिर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासत के आला और तकनीकी तालीम से मुतालिक वजीर ऋषिकेश पटेल इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। आयुर्वेद के 10वें कौमी दिन की तकरीबात आज गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मुनाकिद की जाएंगी। ये रिवायती भारतीय तरीके इलाज के आलमी सतह पर फरोग के सिलसिले में एक तारीखी संग मील है। आयुष की वजारत के मरकजी वजीर मामलिकत आजादाना चार्ज जनाब प्रताप राव जाधव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। اس موقع پر بجلی اور جدید اور قابل تجدید توانائی سے متعلق وزارت کے مرکزی وزیر مملکت جناب شری پد یسو نائک بھی موجود رہیں گے۔ سیوا اور سوشاسن یعنی عوامی خدمت اور اچھی حکمرانی کے منتر پر قدم بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار بڑی تبدیلی لانے اور ترقی کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ سیوا پرو کے عنوان سے خصوصی سلسلے میں آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے کس طرح پورے ملک میں فلاحی اقدامات، سماجی تحفظ اور مالی شمولیت کے ذریعے غیر منضبط شعبے کو مستحکم کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
گزشتہ سال پی ایم سواندھی کے مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ کے پاس قرض کی ضمانت کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فکر نہ کریں، مودی آپ کی گارنٹی لے گا۔
جن کے پاس گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مودی نے کہہ دیا تھا بینکوں سے بھی اور ریڈی پٹری والے بھائی بہن کو بھی، اگر آپ کے پاس گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو چنتا مت کر دیجیے، مودی آپ کی گارنٹی لیتا ہے۔
غیر منضبط شعبہ بھارتی معیشت میں ایک اہم شراکت دار ہے اور مجموعی گھریلو پیداوار میں اس کا تعاون تقریباً 45% ہے۔ وزیر اعظم مودی کے تحت حکومت نے اس غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو با اختیار بنانے کی ذمہ داری لی ہے۔ وزیر اعظم اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی اسکیم نے اسٹریٹ وینڈرز کو کام کرنے کے لیے قرض کی فراہمی میں آسانی پیدا کی ہے اور اس کی ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے کیش بیک جیسی خصوصیات سے مستفیدین کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ اسکیم جون 2020 میں کووڈ-19 وبا سے متاثرہ اسٹریٹ وینڈرز کی مدد کے لیے شروع کی گئی تھی اور اب اسے سال 2030 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جالندھر سے تعلق رکھنے والے ایک وینڈر نے بتایا کہ کس طرح اس اسکیم سے اس کو کاروبار میں مدد ملی ہے۔
میں کپڑے کا کام کرتا ہوں تو باقی میرے کو پتا چلا تھا کہ اسکیم آئی ہے 10,000 روپے لون کی کام کے بڑھوتری کے لیے، تو میں نے ایکو بینک میں گیا تو میں نے بات کیا تو انہوں نے بہت آسانی سے لون دے دیا میرے کو، میرے کام میں لگایا، کام بڑھوتری ہو رہا ہے۔ باقی مودی جی کے اچھا اچھا بہت بہت دھنیواد ہے۔
مودی حکومت کے مختلف اقدامات خدمات کی فراہمی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں تاکہ کارکنان کو فائدے، قرض اور ٹریننگ ملے اور یہ شعبہ اقتصادی طور پر مستحکم ہو جائے۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے 80ویں اجلاس میں باضابطہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب میکرون نے کہا کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا ہی مسئلے کا واحد حل ہے جس سے اسرائیل کے لیے امن سے رہنے میں مدد ملے گی۔ فیڈے خواتین ورلڈ کپ چیمپئن گرانڈ ماسٹر دیویا دیشمکھ کو آئندہ فیڈے عالمی کپ 2025 کے لیے وائلڈ کارڈ عطا کیا گیا ہے۔ یہ مقابلہ 31 اکتوبر سے گوا میں ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے اروناچل پردیش دورے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے اروناچل پردیش کے ایٹانگر میں 5100 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور 3700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بجلی کی پیداوار سے متعلق پروجیکٹوں اور توانگ میں ایک جدید کانفرنس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا۔ روزنامہ پرتاب نے جی ایس ٹی سے متعلق خبر کو اپنے صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے پیر کے روز سے نافذ ہونے والی اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کی ایک بار پھر تعریف کی ہے۔
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے رواں مالی سال کے دوران پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت مزید 25 لاکھ ایل پی جی کنیکشن فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سے خواتین کو با اختیار بنانے کے عزم کو تقویت ملے گی۔ بھارت اور مراکش نے دفاعی صنعتی اشتراک کو بڑھانے کی خاطر رباط میں دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں 71ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ آج 10ویں نیشنل آیوروید ڈے منایا جائے گا جو روایتی بھارتی طریقے علاج کے عالمی سطح پر فروغ کے سلسلے میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ فرانس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا ہے اور گرانڈ ماسٹر دیویا دیشمکھ کو آئندہ فیڈے ورلڈ کپ 2025 کے لیے وائلڈ کارڈ انٹری عطا کی گئی ہے۔ इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।